ڈاکٹر احمد کاظمی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کمیڈین بھی ہیں اور میلبرن کمیڈی فیسٹیول میں پرفارم کر رہے ہیں کچھ شوز کے دوران, ان سے ہر موضوع پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر احمد کاظمی.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا.
شکریہ.
ہمارے سننے والوں کو صرف اپنے بارے میں مختصر کچھ بتائیے.
اوکے, تو میں ڈاکٹر احمد کاظمی ہوں. ایکچولی میں پی بی اے ہوں, میں کہتا ہوں پاکستانی بورن ابراڈ. تو میں کینیڈا میں پیدا ہوا تھا, انگلینڈ میں بھرا ہوں, اور اب 3 سال سے میں آسٹریلیا میں کام کر رہا ہوں جی پی کے ذریعے.
تو آپ ڈاکٹری کے شعبے میں ہی کام کر رہے ہیں یا دوسرے کام بھی کر رہے ہیں؟
تھوڑا ابھی آج کل دوسرا بھی کام کرتا ہوں. تو پچھلے سال میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی کامیڈی شروع کرنے کا. تو
یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ آپ نے کامیڈی کرنا چاہی یا کامیڈی شروع کی.
جی ہاں.
تو کیا کامیڈی کی, وہ بات میں بات کریں گے. پہلے یہ بتائیں کہ کامیڈی کا شوق کیسے آیا؟
ایکچولی اسکول زمانے سے مجھے شوق تھا جیسے ڈرامے کرنا اس طرح کا کچھ, لیکن جب آپ جیسے میڈیسن کی پڑھائی کرتے ہو تو کوئی وقت نہیں باقی رہتا کہ آدمی کوئی اور چیز کر سکتا ہے. تو جیسے جی پی ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اچھا کام ہے, لیکن آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ روزانہ آئے دن لوگوں کی بس تکلیفیں اور بیماریاں سنتے جائیں تو خود آدمی ذرا جیسے تھک جاتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہر ڈاکٹر کو کوئی جیسے ہابی رکھنا چاہیے جس سے اس کو تھوڑا سا سکون ملے, چین ملے, چاہے وہ کرکٹ ہو یا یوگا ہو. تو میرے لیے میں نے سوچا پچھلے سال کیوں نہیں میں کامیڈی کوشش کروں. میرے سارے پیشنس مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت ہنساتے ہیں, ہم بہت جیسے خوش ہوتے ہیں آپ سے بات چیت کر کر. تو میں نے سوچا اوکے, تو میں کوشش کرتا ہوں.
اور آپ پچھلے کچھ عرصے سے پرتھ میں ہی ہیں, آسٹریلیا میں ہیں؟
بالکل, 3 سال سے میں پرتھ میں رہ رہا ہوں, لیکن ایکچولی پچھلے 2-3 مہینے اب میں واپس لندن جا چکا ہوں, چونکہ مجھے تھوڑی سی انٹرسٹ ملی تھی پروڈیوسر سے ادھر, شاید ہم کوئی میڈیسن کی ٹیلی ویژن پروگرام بنائیں گے, تو میں ادھر جا کر واپس شفٹ ہو گیا ہوں.
آپ ڈاکٹری کی وجہ سے یہاں پہ آئے تھے اور ڈاکٹری کی وجہ سے ہی وہاں گئے ہیں, یا جو آپ کا دوسرا کریئر جو ہے کامیڈی کف کی وجہ سے ٹریول کر رہے ہیں؟
یا نو, ایکچولی میں آیا تھا آسٹریلیا ڈاکٹری کے لیے, چونکہ انگلینڈ میں ہمارا ہیلتھ سروس, ہم اسے نیشنل ہیلتھ سروس کہتے ہیں, اور این ایچ ایس میں کام کرنا ذرا مشکل ہے, تھک جاتا ہے انسان. تو ادھر کا سسٹم ذرا بہتر ہے اور موسم بھی بہت بہتر ہے ادھر پرتھ میں. جیسے
پرتھ کا تو میرے خیال سے بہت اچھا.
بالکل. یہ
اچھا, اب کامیڈین کی بات کریں, رسل پیٹرز سے کتنے فیمس کامیڈین ہیں.
بالکل.
وہ ڈاکٹر کے بارے میں ایک بات یہ کہتے ہیں, کیونکہ ان کی بھی انڈین ہیریٹیج ہے, وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی انڈین ڈاکٹر ہو یا وہ ڈاکٹر ہوں جو کہتا ہے میں کچھ کرنا چاہتا تھا زندگی میں, پیانو بجانا چاہتا تھا, میوزک کرنا چاہتا تھا, میں اس کے پاس کبھی نہیں جاتا, کیونکہ وہ کبھی بھی انڈین یا پاکستانی یا جو ہم لوگ جو دیسی لفظ یوز کرتے ہیں.
بالکل بالکل.
تو آپ اسی قسم کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کے پاس آنا ہو تو آپ کے پاس کوئی آئے, یا بچپن سے چاہتے تھے کہ نہیں میں ڈاکٹر بنوں یا کچھ بھی کروں لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ساتھ لے کے چلوں, یا والدین نے کہا کہ نہیں بھائی ڈاکٹر ہی بننا ہے؟
نہیں نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایکچولی میرے والدین ذرا ماڈرن قسم کے ہیں, لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے سارے جیسے لوگوں میں ایجوکیشن کا بہت جیسے پرائیورٹی بنتا ہے. تو ایکچولی میرے والدین خوش تھے اگر میں بس یونیورسٹی میں کچھ پڑھوں, میں کچھ اچھا جاب کروں, اور وہ سب سے اچھا کروں جو بھی میں ڈیسائیڈ کروں کہ میں کروں. لیکن میرا خود ڈیسیجن تھا ایکچولی, فیصلہ کہ میں میڈیسن کرنا چاہوں گا.
ٹھیک ہے. تو جب آپ نے میڈیسن کی, میڈیسن کے بعد آپ ڈاکٹری بھی کرتے رہے, تو پچھلے سال ہی آپ کو پہلی بار ایسا موقع ملا کہ آپ کامیڈی کو اتنا زیادہ اٹینشن دے سکیں؟
یا بالکل. تو ایکچولی کیا ہوا تھا, میرے والد صاحب فوت ہو گئے 2015 میں لنگ کینسر سے, اور کام جاتے ہوئے مجھے جیسے تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی, جیسے اتنا ہم ایمپیتھی کہتے ہیں انگریزی میں, جیسے سننا دوسروں لوگوں کی تکلیفیں جب آدمی خود جیسے درد میں. تو میں نے سوچا میں تھوڑی دیر کے لیے پارٹ ٹائم جاتا ہوں جب تک میرا جیسے اب گریف بہتر نہ ہو. تو میں نے سوچا کہ تو اگر کوئی وقت ہوا, اب ہے وقت, تو میں نے سوچا کیوں نہیں کروں ابھی.
اچھا, تو جب پہلا شو آپ کا کہاں تھا؟
پرتھ میں, فرنچ فیسٹیول فیبروری 2016 میں.
تو کیسا تجربہ رہا پہلے فیسٹیول کا, جب پہلی بار اسٹیج پہ گئے یا پہلا شو تھا؟
تو جیسے تھوڑا سا ڈر رہا تھا, میں پہلی دفعہ کر رہا تھا, تو میں نے سوچا کیا کہیں گے لوگ, ہنسیں گے یا نہیں. لیکن ایکچولی میں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ سارے جو پیسے میں نے بنائے تھے اس ٹور سے, میں نے ویریس کینسر چیریٹیز کو دیا تھا, جیسے میرے والد صاحب کے نام سے. تو یہ بھی جسٹ اس سے تھوڑا سا مجھے سکون ملا, چونکہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر لوگ ہنسے بھی نہیں یا میرا کامیڈی اتنا اچھا نہیں, تو اس کے باوجود پھر بھی کچھ اچھا بنا میرا, بالکل میرا شو. لیکن ایکچولی ماشاء اللہ میرے اتنے اچھے ریویوز ملے, میرے سارے ٹکٹس بک گئے, سولڈ آؤٹ سیزن تھا, تو اسی لیے اتنا وقت स्पेंड किया था शो बनाने में, तो मैंने सोचा ओके अगर ये अच्छा, वाकई अच्छा शो है, सब लोग कह रहे हैं कि वो बहुत हंसे, तो मैं टूर नहीं क्यों करूं। तो एक्चुअली मैं एडिलेड गया था, एडिनबरा, लॉस एंजलिस, ब्राइटन और अब मेलबर्न तक आ गया हूं।
तो जब पहला शो था आपको उम्मीद थी कि इतना हिट हो जाएगा या इतने रिव्यूज पॉजिटिव आएंगे?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं सोच रहा था शायद बस मुझे आप लाइक खुद कुछ मिलेगा इससे कर कर, जैसे थोड़े सा चैरिटी बनाने से पैसे भी मिलेंगे और जैसे, लेकिन नहीं, मुझे कभी नहीं पता था क्या एक्चुअली इतना।
अच्छा, आपने कहा कि शो की तैयारी की, वक्त लगाया तैयार करने में, तो उससे पहले वक्त कैसे लगाया? क्या आप छोटे मोटे बार्स में, क्लब्स में के परफॉर्म करते थे या आपको राइटिंग में ही बैठ के टाइम लगा?
पहले कोशिश की थी छोटे बार्स में कॉमेडी करने की, लेकिन कोई मुझे टाइम ही नहीं देता था, चूंकि वो मुझे पूछते थे कि ओके क्या कर चुके हो ऑलरेडी, और मैंने बोला फिर कुछ नहीं, पहली दफा कर रहा, तो फिर कोई आपको मौका ही नहीं मिलता। तो एक्चुअली पहली दफा स्टेज पर मेरा अपना ही शो था, लेकिन यह मैंने सारा पहले लिखता हूँ, जैसे मेरे सारे कहानियाँ, फिर वो स्क्रिप्ट बनाता हूँ, और फिर सारे मेरे दोस्त इकट्ठे बैठते थे एक ही कमरे में, और फिर मैं कहता था कि अब मैं जरा रिहर्सल करता हूँ, आप मुझे बताओ क्या, कौन से जोक्स, कौन से लतीफे फनी है और कौन से नहीं, तो ऐसे बना।
तो आपकी राइटिंग, आप क्या ख्याल है, कैसी है? क्या आपके लिए खास टाइम निकालना पड़ता है कि अब मैं कुछ लिखूंगा, चलते फिरते कभी इंस्पिरेशन आती है कि नहीं चलो ये आइडिया अच्छा लग रहा है?
यह एक्चुअली आजकल टेक्नोलॉजी के साथ आदमी सब कुछ चलते फिरते कर सकता है, तो एक्चुअली मैं मोबाइल फोन पर आई नोट्स पे सारा कुछ लिखता जाता
हूं। तो नहीं होता आपके साथ जो अक्सर किया जाता है, सोते सोते कुछ ख्वाब आया, चलो उठ के लिख लो जल्दी से?
वो भी होता है बिल्कुल, आपको कैसे पता था? तो एक्चुअली आईफोन बिस्तर के पास रहता है, और फिर
नहीं, आई थिंक जो भी राइटिंग की फील्ड से शोबे से वाबस्ता है, बेशक कॉमेडी लिखे ना लिखे, वो इस किस्म की चीज़ें बहुत करते हैं, और वहाँ के यूएस के कुछ कॉमेडियंस हैं तो वो कॉमन है, बिल बर हो गए, या हमारे यहाँ से जिम जेफरीज वहाँ गए हैं, तो वो भी इस किस्म की बातें बहुत करते हैं कि वो शौक बहुत ज़्यादा है उनको कॉमेडी का, और ख़ासतौर पर मेरे ख्याल से चलते फिरते वन लाइनर्स ऐसे आते हैं जो आप मामूलात ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं चलते फिरते। अगर आप लिखने बैठेंगे तो शायद इतना फनी ना हो, लेकिन चलते फिरते हम दोनों की बातों के दौरान ही कैजुअली कुछ इतनी चीज़ें आ सकती हैं जिनको
बिल्कुल,
तो।
और कभी कभार पेशेंट से भी आते हैं कुछ, जैसे चंद लतीफ़, और फिर मैं कहता हूँ उनसे कि मैं ज़रा वो इंकॉर्पोरेट कर सकता हूँ मेरे शो में, और फिर वो कहते हैं बिल्कुल, सो बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं।
तो अच्छा, टॉपिक्स किस किस्म के चूज़ करते हैं आप?
तो एक्चुअली ये इसके बारे में मुझे थोड़ा सोचना पड़ा था, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, और मैंने डॉक्टर की जोक्स करने थे, लेकिन एक्चुअली मैंने कोई जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं ब्रेक करना था, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे जो पेशेंट्स है उनको तकलीफ पहुँचे। तो मेरे सारे स्टोरीज एक्चुअली इन तरह के स्टोरीज है कि वो किसी एक इंडिविजुअल के बारे नहीं है, वो जस्ट मैं बताता हूँ कि क्या होता है जीपी के क्लिनिक में, लोग यूजुअली क्या करते हैं, जैसे बच्चे ऐसे करते हैं, मर्द ऐसे करते हैं, तो इन तरह की कहानियां मैं कहता हूँ जो एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्सन के बारे में,
जो सॉफ्ट ह्यूमर होता है। गुफ्तगु का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस, एनकाउंटर्स का जो आपको क्लिनिक में हुए, जिसकी वजह से शायद आपको लगता हो कि मैं हूँ तो कॉमेडियन या मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ इवेंट जरूर ऐसे होंगे जिससे आपको लगा कि ये तो लोगों को बताने चाहिए।
बिल्कुल,
वो उनमें से कुछ का जिक्र करें।
ओके, तो एक्चुअली अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं आपके थोड़ा सा बात करता हूँ देसी लोगों के बारे। तो पाकिस्तानी पेशेंट्स मेरे सबके फेवरेट हैं, सबसे फेवरेट, चूँकि जैसे वो देखते हैं कि डॉक्टर पाकिस्तानी है तो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो इन तरह की चीज़ें करते हैं जो आदमी बस मुस्कराता है। जैसे हम करेंगे कुछ उनके सेहत के बारे, जैसे हम डायबिटीज़ की जैसे मॉनिटरिंग करेंगे, फिर उसके बाद मुझे पूछेंगे डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपकी शादी हुई है? तो मेरी एक निवासी है, वो डेंटिस्ट है 30 साल की, और फिर शुरू करते हैं, और फिर मोबाइल फोन निकाल कर मुझे फोटो भी दिखाते हैं, और मैं सोचता हूँ यार प्लीज मैं आपका डॉक्टर हूँ। तो ये करते हैं, और क्या करते हैं, तो ये भी करते हैं, जैसे सेहत बात करने के बाद वो कहते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज आप मुझे बताएं आपको क्या खाना अच्छा लगता है, मैं जरूर आपके लिए पका कर ले आता हूँ, पकौड़े, गोलगप्पे, इस तरह के कुछ, और फिर लेकर आते भी नहीं, पूछ कर लेकर आते भी नहीं।
ठीक है, देसी थीम पे और क्या क्या बातें होती हैं?
हमारे जैसे कल्चर में डिप्रेशन का कोई लफ्ज़ नहीं है, और हम मानते भी नहीं है कि आदमी को डिप्रेशन हो जा सकता है। तो ये बात है, अगर जैसे घर में कोई परेशानी है या आदमी दुखी है, सिवाय ये कहना कि उनको डिप्रेशन है, वो आकर मुझे कहते हैं कि दर्द हो रही है, और फिर मैं पूछता हूँ कि किधर दर्द हो रही है, और कहते हैं हर तरफ, सर से, कमर में, हाथों में, और फिर मैं ज़रा कोशिश करता हूँ पूछने के लिए कि आपके क्या सिम्टम्स है, लेकिन एक्चुअली वो और जैसे आ नहीं पाते ये कहना कि एक्चुअली वो दिल दुखी है, वो प्रेफर ये कहना कि मेरे सारे जिस्म में तकलीफ हो रही है। तो और ये चीज सिर्फ देसी लोगों में होती है और पर्टिकुलरली देसी औरतों में।
अच्छा।
तो या और सारे जैसे अंग्रेजी डॉक्टर उनको समझ नहीं आती है कि ये क्या होते हैं। जब मेरा कोई ट्रेनिंग होता है पास, वो कहते हैं यार मिसेस खान आई है मेरे पास डॉक्टर काजमी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या क्या डायग्नोसिस है। तो मुझे कहते हैं पाँव में तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है, सर में तकलीफ है, हर तरफ दर्द है। तो फिर आपको आपके माइंड में क्या हो रहा है? तो फिर मैं जाकर उनको कहता हूँ कि पूछना अभी अभी क्या हो रहा है घर में और फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
अच्छा अच्छा ऐसा होता है कि आपके पास कभी डॉक्टर सिर्फ इस वजह से आते हो कि आप उर्दू बोल सकते हैं, सॉरी पेशेंट्स इस वजह से आते हो कि नहीं हमें तो इन्हीं के पास जाना है क्योंकि ये जबान समझ सकते हैं या बोल सकते हैं?
या बिल्कुल, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं उर्दू बोल पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी उर्दू थोड़ी आराम से चलती है क्योंकि मेरी चूड़ी
हमारे सुनने वाले मेरे ख्याल से इस बात को समझ सकते हैं कि आपकी उर्दू काफी उम्दा है।
नो थैंक यू। लेकिन यह बात मसला यह है कि जैसे मैं कह रहा था पहले कि मेरी पूरी जैसे पढ़ाई इंग्लिश मीडियम हुई है, हम सिर्फ थोड़ा बहुत उर्दू बात किया करते थे घर में जैसे खाने के बारे। और लेकिन ये भी मुझे अच्छा लगता है जब पाकिस्तानी और देसी लोगों आते हैं मेरे क्लिनिक में, चूँकि उनको अच्छा लगता है कि गलतियों के भी साथ लेकिन बोल तो पाता हूँ। तो जैसे या बिल्कुल,
जब आपने परफॉर्म किया है पर्थ में या डिफरेंट जगहों पे, ऑडियंस आपकी कौन कौन रही है? क्या
एक्चुअली ज़्यादातर मिक्स ही है। तो चंद डॉक्टर आते हैं उनको जैसे शौक है सुनना के, नर्सेज भी आते हैं और एक्चुअली, लेकिन हर आदमी का एक जैसे रिश्तेदारी होती है डॉक्टर के साथ, तो सभी लोगों को जैसे थोड़ी सी
रिलेट कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। उनको भी जैसे क्यूरियोसिटी है कि एक्चुअली क्या सोचता है मेरा डॉक्टर मेरे बारे, क्या क्या होता है डॉक्टर के ऑफिस के अंदर।
अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स आपके पास आए हों जिन्होंने शो देखा हो और ये कहा हो कि तुम तो वाकई सच्चाई बता रहे हो? ऐसा हमारे साथ भी हुआ।
बिल्कुल, हर शो के बाद 2-3 आते हैं, हाथ मिलाकर कहते हैं ओ मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सोच रहा था सिर्फ मैं ही हूँ जो बर्दाश्त करता हूँ ये सारे चीजें, लेकिन आपका आपका जैसे जिंदगी बिल्कुल सेम ही है। तो वो भी सुनकर मुझे भी जैसे
तो अब ये है कि एथनिक जोक्स तो वैसे ही पॉपुलर हैं अगर एक सॉफ्ट फिल्म में कुछ है, बहुत सारी जगह पे खास तौर पे अगर अमेरिका में देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के को एक्सक्यूज बनाकर या उसको इस्तेमाल करते हुए हर किस्म की बात कह दी जाती है, हर किस्म का जोक कह दिया जाता है और ये भी समझा जाता है कि कुछ नाजिब अल्फाज या गालियाँ अगर ना दी जाएँ जो कि उनके कल्चर में इतना कोई बुरा शब्द ना भी समझा जाए तो वो है, लेकिन कुछ कॉमेडियंस हैं जिन्होंने अहद किया होता है, प्लस किया होता है कि वी वॉन्ट यूज द एफ वर्ड या हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। तो आपने भी इस किस्म का कोई रूल रखा हुआ है अपने लिए कि किस किस्म की कॉमेडी करनी है, किस लेवल तक करनी
है? या बिल्कुल, नो आप बिल्कुल सही कह रहे। तो मेरा भी एक लेवल है एक्चुअली। तो जैसे चंद कॉमेडियंस इन तरह के होते हैं जो उनको अच्छा लगता है जैसे ऑडियंस को ह्यूमिलिएट करना, तो वो एक दो लोगों के बारे जस्ट जोक ही करते जाएंगे जो, तो मैं वो बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो वो एक चीज़ मैं नहीं करता,
यानी फ्रंट रो में बैठते हुए डरे ना
बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई डरता नहीं अब मेरे और मैं कोई आदमी डरता नहीं मेरे कॉमेडी शोज में बैठ कर, तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्चुअली मेरे मायने में जैसे मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि मैं स्टेज पर खड़ा होता हूँ और इतने सारे लोग बैठे हुए और मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो हंसे और एक अच्छा जैसे मोमेंट पास करे मेरे पास। लेकिन ये भी मेरा सोच है कि कुछ अच्छा चीज़ होना चाहिए उस, जैसे कोई फ़ायदा का चीज़, और ये हो सकता है कि वो एंटरटेनिंग और फ़ायदा मंद भी हो। तो जैसे मैं कह रहा था पिछले साल मैंने वो पैसे रेज किए थे कैंसर के बारे में, एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत शो में एक्चुअली डिस्कशन भी करता हूँ ग्रीफ के बारे, कैंसर अवेयरनेस के बारे में, कहता हूँ कि सिगरेट पीना बंद करें, पैप्समेयर के लिए आप जाएं, इस तरह का कुछ। और इस साल मैं कुछ और कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं एक जोक बनाता हूँ शो में जो शो के एंड में, और मैं कहता हूँ कि ओके मुझे पता है कि आप सब सोच रहे थे शो के दरमियान के ये, मैं आपको कुछ बताता हूँ अभी मेरे बारे एक एक चीज़, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। और फिर सारे हंसते हैं और फिर मैं समझाता हूँ मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, चूँकि मेरे माइंड में थोड़ी सी जैसे पता नहीं प्रोपेगेंडा, ज़रा सख्त किस्म का वो लफ्ज़ है, लेकिन थोड़ी सी प्रोपेगेंडा है मीडिया में आजकल मुसलमान लोगों के ख़िलाफ़। जैसे अगर एक मुसलमान आदमी कुछ अच्छा करे तो हम ये लफ्ज़ मुस्लिम कभी इस्तेमाल नहीं करते न्यूज़ में टीवी पे, लेकिन अगर कोई मुसलमान कुछ गलत चीज़ करे तो फिर ज़रूर उनको एक मुस्लिम टेररिस्ट के बोला जाएगा।
रिलीजन साइड
बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा ये जैसे रीएड्रेस करने के लिए जैसे हमारे सब की जिम्मेदारी बनती है, तो अगर ये सारे लोग बैठे हुए हैं मेरे कॉमेडी शो में और एक लतीफ़ा के ज़रिए मैं एक्चुअली कुछ सीरियस कन्वे कर सकता हूँ उनको, तो फिर क्यों नहीं करूँ। तो फिर मैं सोचता हूँ कि लोग यूजली नहीं कहते न्यूज़ में एक मुसलमान डॉक्टर, एक मुसलमान कमेडियन, तो अगर वो नहीं कहेंगे तो मैं फिर क्यों नहीं कहूँ।
ठीक है, तो यानी आप चाहते हैं कि अगर हम हेडलाइन लगाएं आपकी, तो हम ये कहें कि मुसलमान डॉक्टर लोगों को हंसा रहा है।
या बिल्कुल, क्यों नहीं।
ठीक,
क्योंकि अगर मैं कुछ गलत किया तो फिर जरूर वो कहते
हैं, तो जरूर लगाएंगे।
बिल्कुल, एक मुसलमान रॉबर, एक मुसलमान टेररिस्ट। तो
चले हम लोग मैसेजेस अगर आएंगे तो और पढ़ते जाते हैं और अब आगे बात करते हैं। मेरे ख्याल से मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा, वो लोग जो शो देखने जाएं आपका, तो उसके बाद भी हमें मैसेज करके फीडबैक दें, बताएं कैसा है। और मेरे ख्याल से डायरेक्टली बाद में आपसे भी रब्ता कर सकते हैं आपकी वेबसाइट।
हर शो के बाद एक्चुअली मैं बाहर आकर सब लोगों को मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, फोटोज लेते हैं, तो फिर बहुत खुशी होगी।
कभी ऐसा तो नहीं होता कोई वो कहता है कि शो तो अच्छा था, मुझे बताएं यहाँ पे दर्द हो रहा, क्या इलाज है।
और सभी लोग यही कहते हैं जब भी कोई जैसे डिनर पार्टी हो या मस्जिद में बैठा हुआ, जो भी कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर है, आप डॉक्टर है, तो फिर और फिर
आप इलाज करें।
बिल्कुल बिल्कुल।
हम देसी हेल्थ से मुताल्लिक कुछ बातें कर रहे थे, उस पर आपने कुछ कहना था, क्या बात की है।
या तो दो तीन चीजें हैं एक्चुअली जो देसी लोगों में जब भी मैं मिलता हूँ उनसे मैं कहता हूँ। तो एक प्रॉब्लम हमारे लोगों में है कि डायबिटीज का प्रॉब्लम। तो वजह यह है एक्चुअली कि जैसे गोरों लोगों जब वो मोटे होते हैं तो फिर शायद 10-15 किलो के बाद फिर डायबिटीज़ आती है उनको, लेकिन हमारे लोगों में मोटापे में बस सिर्फ 2-3 किलो ज़्यादा हमारा वज़न बढ़ जाता है और फिर डायबिटीज़ शुरू होती है, और लोगों ये समझते नहीं है। तो जब मैं कोशिश करता हूँ कहने को, एक आदमी को जवान है, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, तो फिर मैं कहता हूँ प्लीज़ आप ज़रा वज़न कम करें, उसकी बेगम या उसकी माँ जैसे गुस्सा हो जाती है मेरे साथ, क्या कहना चाहते हैं आप, देखो कितना खुश लगता है मेरा खामिन, मेरा मियाँ, मैं अच्छा पकाती हूँ। तो मैं कहता हूँ ऐसा मसला कुछ नहीं है, जैसे हमारे लोगों में बस सिर्फ 2-3 केजी के साथ डायबिटीज़ हो जाती है। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ सब लोगों को, मुझे पता है कि हमें अच्छा लगता है जब हमारे सारे मर्द लोग थोड़े से पले हुए हों, लेकिन एक्चुअली सेहत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है।
हमारे तो ये भी है ना कि घी वाले पराठे जब तक नहीं होंगे तो नाश्ता पूरा नहीं होगा।
बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे अगर हम अभी तक जैसे खेत में काम करेंगे पूरे दिन, तो फिर आप घी वाले पराठे खा सकते हैं, लेकिन आजकल सारे लोग ऑफिस में बैठकर 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं, तो फिर घी वाले पराठे खाने का कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
और उस तो फिर इसके अलावा एक्सरसाइज भी नहीं होती, बहुत बहुत ज्यादा दूर है हम लोग एक्सरसाइज के, रनिंग से, भागने से, हमारे लिए काम पे जाना ही बहुत बड़ी एक्सरसाइज है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।
तो इसका क्या हल निकाला जाए।
बस या बाहर जाकर जैसे गाड़ी कम करें और पैदल चले ज़्यादा, या जिम में जाए, या स्विमिंग करना, इस तरह का कुछ बस टाइम बनाना पड़ता है।
इसमें बहुत सारी चीज़ें कल्चरल एस्पेक्ट पे भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रमोशन नहीं है। हम जब पाकिस्तान या दीगर इंडिया से भी कभी लोग आते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं है कि बचपन से दौड़ रहे हैं या भाग रहे हैं, वो सिर्फ भागते हैं उस वक्त जब बस छूट रही होती है तो बस पकड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन वैसे एक्सरसाइज करना जो यहाँ पे है वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखते हैं, तो उनके यहाँ एक्सरसाइज इट्स बिल्डिंग, अगर इस लेवल पे आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती एक्सरसाइज करने के लिए।
बिल्कुल,
तो
बिल्कुल।
वो जो बैरियर आता है उससे निकलने के लिए क्या कर सकते हैं।
या एक्चुअली हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और जैसे हमारे कल्चर में अब ज्यादा जैसे एक्चुअली we'll have to try and propagate this.
सबसे ज्यादा मुश्किल या annoying या डर लगने वाली बात क्या होती है जब आप परफॉर्म करते हैं।
बस यही एक चीज है कि लोग हंसेंगे नहीं।
ऐसा हुआ है कभी कि भाई आपने कुछ, ऑब्वियसली कुछ जोक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा लग रहा हो अच्छे हैं, या कुछ सिलेक्टेड लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन
बिल्कुल या एक्चुअली हर ऑडियंस मुख्तलिफ होती है, और डिपेंड करता है कि वक्त क्या है, सिटी कौन सी है, कितने लोग जवान है, कितने लोग बुजुर्ग है। तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे सारे जोक्स जैसे रिलेटिवली तमीज़ वाले हैं, रिलेटिवली जैसे जेंटल ह्यूमर किस्म के हैं, तो यूजली लोग हंसते हैं,
क्योंकि वो आपका टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो हर किसी की लाइफ से इजीली रिलेट हो सकते हैं मेरे ख्याल से। डॉक्टर तो हर कोई देखता ही है कुछ ना कुछ हो, तो मेरे ख्याल से वो आसान हो जाता है।
बिल्कुल।
लेकिन फिर भी कभी, अच्छा ये बताइए कि अलग अलग जगहों पर परफॉर्म करते हैं, अलग अलग शहरों में हो या अलग अलग कंट्रीज में हो, तो आपको ये फ़र्क नज़र आया कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन से अलग है, या ऑस्ट्रेलिया में ही पर्थ का क्राउड ऐसा है लेकिन मेलबर्न का क्राउड ऐसा है।
पहले मैं सोच रहा था कि हो हाय शायद ये होगा और मेरे सारे जोक्स चेंज करना पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब मैं जानता हूँ कि एक्चुअली ये जो रिलेशनशिप या रिश्तेदारी जो होती है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान, सब लोगों के लिए सेम ही है एक्चुअली।
ठीक है, यानी हर जगह ये यूनिवर्सल है।
बिल्कुल बिल्कुल।
हर देसी ने पराठे खाने हैं।
या चाहे वो कैनेडियन देसी या इंग्लिश देसी।
नहीं नहीं सामीन, अगर आपके मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं पढ़ सकता हूँ, आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं facebook.com/sbsurdu पर, और ये पूरा इंटरव्यू اور آج کے پروگرام میں جتنی باتیں ہوئی ہیں ان کے منتخب حصے ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پر بھی موجود ہوں گے۔